नीति वचन अध्याय 13। नीति वचन के 13वें अध्याय में भी धर्मी और अधर्मी में, बुद्धिमान और ठट्टा करने वालों में, भले और दुराचारियों में तुलना जारी है। नीति वचन अध्याय 13 पद 1 से लेकर 7 तक। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सजन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा के कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। क्योंकि सच्चा धन भौतिक नाप से नापा नहीं जाता, सच्चे धन का आत्मिक नाप होता है जो सदा के लिए होता है। आपका सच्चा धन वो है जो मृत्यु के बाद आपको मिलेगा। बहुत से लोगों के पास जीते जी बहुत धन होता है, लेकिन मृत्यु के 5 मिनट के बाद वे बिल्कुल निर्धन हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रह जाता। बहुत से लोग हैं जिनके पास जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन मरने के 5 मिनट के बाद उन लोगों को बहुत धन, सच्चा धन, आत्मिक धन मिलता है। लूका के सुसमाचार में अध्याय 12 पद 16 से लेकर पद 21 तक में यीशु ने एक दृष्टांत बताया है। लूका 12 अध्याय 16 से 21 पद कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। सच्चा धन वो है जो स्वर्ग में जमा किया जाता है। ये वो धन है जो कभी घटता नहीं, जिसका मूल्य कम नहीं होता। ये सच्चा धन है। बहुत से लोग हैं जो बहुत धनी दिखाई देते हैं, तो भी सच में उनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो निर्धन दिखाई देते हैं, तो भी बहुत धनी है। नीति वचन अध्याय 13 पद 8 से लेकर 10 तक। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। यहां एक रुचिकर व्याख्या है, लेकिन सावधानी से विचार करें। जब कभी झगड़ा पैदा होता है, कहीं ना कहीं उस झगड़े के पीछे किसी का घमंड होता है। ये कितना आवश्यक है कि हम क्रूस के पास आकर अपने पुराने अस्तित्व को मरा समझे, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने घमंड से छुटकारा पा सकते हैं। यही एक रास्ता है कि हम अपने ऐसे इरादों से छुटकारा पाएं। मैं बहुत परेशान हूं, आपने सुना उसने क्या किया। आप क्यों इतने परेशान हो? देखिए, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। ठीक है, इसमें सच्चाई ही तो है। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी सच्चाई के बारे में कुछ भी जाने। मैं सदा चाहता हूं कि लोग मुझे जितना अच्छा मैं हूं उससे अधिक अच्छा समझे, क्योंकि मुझे चापलूसी बहुत अच्छी लगती है। यदि वे कभी मेरी तरह लगते हैं तो भी मुझे उनकी चिंता नहीं। मैं चाहता हूं कि वे मुझे वास्तव में उद्धार कहें। ओह, कैसी सुंदर छवि, जो वास्तव में मेरी तरह तो नहीं लगती लेकिन देखने में अच्छी है। जो भी हो, जैसा भी हो, हम एक अच्छा असर डालना चाहते हैं। जो हमारी छवि को धुंधला करता है उससे हमारे मन में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। घमंड कलह का कारण है। केवल घमंड से ही कलह होती है। नीतिवचन अध्याय 13 पद 10 और 11। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। हेरा फेरी से लोग धन प्राप्त करते हैं। झगड़े रगड़े से प्राप्त किया धन भी धनी होने का एक तरीका है। धन जो धनी होने के विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया गया हो समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति है, वो माफिया गिरोह का सदस्य है। मैं उसे काफी समय से मसीह की गवाही दे रहा हूं। उसे पैसों से खेलना पसंद है। उसने मेरे सामने अपनी तिजोरी खोली कि मैं उसमें रखी नोटों की गड्डियां देखूं। मुझे बाहर खाने पर ले जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। वहां भी वो नोटों की गड्डियों का प्रदर्शन करता है। उसे नोट दिखाना बहुत अच्छा लगता है। वो सदा कोई ना कोई बुरी योजना बनाता रहता है कि कैसे दूसरे आदमी को लूटा जाए। वो एक दिन हंसते हुए बता रहा था कि कैसे उसने एक लड़के को किसी के रास्ते से हटाने के लिए 20,000 रुपए लिए। उसने कहा, उसे इस काम के लिए 50,000 रुपए मिले हैं। उसने बताया, मैंने 20,000 रुपए सुपारी ले ली और 30,000 रुपए काम होने के बाद मिलेंगे। और उसने आगे कहा, मैंने केवल 20,000 रुपए लिए हैं। यदि मैं उस लड़के को मारूंगा नहीं तो जिसने सुपारी दी है वो किसी और व्यक्ति से मेरी शिकायत करेगा। उसने कहा कि सैकड़ों लड़के जानते हैं कि उसने सुपारी के 20,000 रुपए लिए हैं। वे रात भर बैठकर योजना बनाएंगे कि मुझसे ये बंडल कैसा लूटा जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई ना कोई किसी कारण से मेरे पास आएगा और वो मुझसे ये बंडल रुपए ले जाएगा, और जब वो ऐसा करेगा तब दूसरे लोग उससे वो रुपयों का बंडल लेने की योजना बनाने लगेंगे। हम सब जानते हैं कि रुपयों का बंडल कहाँ है, और उसने बताया, हम थोड़ी थोड़ी देर सब उसे अपने पास रखेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, आज या कल कोई एक नई योजना के साथ आएगा और हमें लूट लेगा, तब हम उसके पीछे लग जाते हैं। उसने आगे बताया कि पैसा हमारे हाथों से एक दूसरे के हाथों में आता जाता रहता है। मुझे ये नीति वचन ध्यान आया। नीति वचन 13 अध्याय पद 12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। हाँ प्रिय, मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगा, लेकिन एक वर्ष के लिए रुक जाओ। ओह, मेरा हृदय शिथिल हो जाता है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तब मन शिथिल होता है। नीति वचन अध्याय 13 पद 12 और 13। परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुझ जानता वो नाश हो जाता है। ये परमेश्वर का वचन होना चाहिए। नीति वचन 13 अध्याय पद 13 में आगे लिखा है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है, वे आशीष पाएंगे। नीति वचन अध्याय 13 पद 14 और 15। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। हम पापियों को देखकर कहते हैं, ओह उसने तो अपनी इच्छा पूरी कर ली। नहीं, विश्वासघाती का मार्ग कठिन है। प्रभु घोषणा करता है और हम बहुत बार देखते हैं कि वे पकड़े गए। लोग कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वासघातियों का मार्ग खड़ा होता है। इस मार्ग में चलने से आप एक दिन अवश्य फंस जाओगे और जब ऐसा होगा आपको भुगतना पड़ेगा। नीति वचन अध्याय 13 पद 16 से लेकर 19 तक। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। अभिलाषा पूरी होना और लक्ष्य प्राप्त करना कितना अच्छा लगता है। नीति वचन अध्याय 13 पद 20 से लेकर 23 तक। बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। नीति वचन अध्याय 13 पद 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। सुलेमान के पास बेटे को सुधारने के लिए कहने को बहुत कुछ है। नीति वचन 22 अध्याय 15 पद। लड़के के मन में मूर्ता बंदी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वो उससे दूर की जाती है। फिर सुलेमान कहता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। मेरे बेटे ने सोचा, ये आज्ञा है, और जब मैंने छड़ी चलाई, बेटे ने कहा, लेकिन वचन कहता है जो बेटे पर छड़ी चलाता वो उसका बैरी है। बेटे ने सोचा, मैं उसका बैरी हूं, और मैंने उसे बताया, बेटे आप समझे नहीं, मेरा मतलब है यदि मैं आप पर छड़ी न चलाऊं तो मैं आपका बैरी हूं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। नीति वचन 13 अध्याय 25 पद। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं।